नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कार्यकाल यानम और माहे में होगी।
पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
जनादेश 2026।
असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
जनादेश 2026।
पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित 1 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।